हमारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने।
समर्थ बना दिया,
हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना।
ओम शांति। साधना का तीसरा दिन। तो पहले दिन हमने आसन का अभ्यास किया, स्थूल, सूक्ष्म और सिंहासन। दूसरे दिन हमने वैराग का अभ्यास किया, जहां जहां राग है, जहां जहां आसक्ति है, जिस जिस चीज में बंधन है, उन सभी बातों से स्वयं को, स्वयं की चेतना को, चित्त को मुक्त करना है। तो आज तपस्या का तीसरा दिन, वैराग की कल बहुत बातें की। आज प्रभु प्रेम की बातें करेंगे। मैं बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। तो इस स्वमान भट्टी में आज का स्वमान है, मैं कौन हूं? बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। अव्यक्त वाणी, 11 मई 1984, 11th May 1984। सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। एक है जानना, एक है मानना और एक है अनुभव करना। शरीर के बारे में कोई कितना भी जान सकता है किताबें पढ़कर, पर वो हुआ जानना? वो केवल मानना हुआ, जाना नहीं है शायद। अनुभव उसके ऊपर की बात है। तो एक है केवल मान लेना, एक है जान लेना और तीसरा है अनुभव कर लेना। बुद्धि से जाना है, बुद्धि से माना भी है, परंतु अनुभव शायद बहुत सी बातों का अब तक नहीं हुआ है। तो बाबा कह रहे, सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। सुनने वाले नहीं, केवल जानने वाले नहीं, केवल मानने वाले भी नहीं, अनुभव करने वाले। तो छत्र छाया के अंदर रहते, जो छत्र छाया के अंदर रहते वह सदा सेफ रहते हैं। कभी बरसात या तूफान आता है तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की याद छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही माया जीत है। याद को भूलो, अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसी छत्र छाया में रहने वाले हैं उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता रहता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। प्राप्ति होती रहती है, अनुभूति होती रहती है और तृप्ति रहती है। तीन निशानी है रूहानी आशिकों की। कभी कमजोर होकर माया से हार नहीं खा सकते। कभी माया याद भुला तो नहीं देती। 63 जन्म भूलते रहे, संगम युग है याद में रहने का युग। 63 जन्म भूले रहे, 63 जन्म धक्के खाते रहे, 63 जन्म एक अज्ञात अंधकार में रहे, 63 जन्म एक तिमिर की रात है। न स्वयं का पता था, न सृष्टि का पता था, न भगवान का पता था, न जीवन के लक्ष्य का पता था, कुछ भी पता नहीं था। इस समय भूलना नहीं। भूलने से क्या हुआ? विस्मृति से क्या हुआ? खेल सारा दो ही चीजों का है, स्मृति और विस्मृति। जब जब हम भूलते हैं क्या होता है? गलतियां, दुख, भय। जब जब भूलते हैं क्या होता है? घाटा, परेशानी, तकलीफ, दुख, पीड़ा, दर्द, वेदना, उलझन, कंफ्यूजन और टेंशन और विस्मृति हो गई है, पश्चाताप। बड़ी भारी गलतियां और फिर पश्चाताप, भूल हो गई। क्यों भूल होती है? क्योंकि उस क्षण वो विस्मृति में है, उसके बाद तुरंत स्मृति आ गई, परंतु समय अब हाथ से निकल गया है। सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। विस्मृत हुए कि भूले हुए। 63 जन्म भूलते रहे, संगम युग है याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं। भूलने से ठोकर खाई, दुख मिला, अभी फिर कैसे भूलेंगे? अभी सदा याद में रहने वाले। तो तपस्या के इस तीसरे दिन जो तपस्या करनी है वो है एक अनुभव। कौन सा अनुभव? कौन सा अनुभव? मैं छत्र छाया के अंदर हूं। मैं छत्र छाया के अंदर हूं। जैसे उस दिन भी बताया, पहले स्थूल का अनुभव हो फिर सूक्ष्म का अनुभव हो सकता है। तो पहले स्थूल का अनुभव करना है। तो ऐसी छत्र छाया कहां मिलेगी? छाता। और ऐसी छत्र छाया कहां मिलेगी? नकी पर है ना, ऐसा एक बना हुआ है, जानकी पार्क, पीस पार्क। पहले स्थूल का अनुभव हो फिर सूक्ष्म का हो सकता है। तो ऐसे किसी स्थूल स्थान पर जाना है जहां इस तरह की छत्र छाया बनी है। ओम शांति भवन में भी है ऊपर दो ऐसे छत्र। वहां पर बैठकर यह अनुभव करना कि यहां मैं जब हूं तो क्या क्या फायदे हो रहे हैं मुझे, क्या क्या फायदे हो रहे हैं? धूप से मुक्ति, क्या क्या फायदे हो रहे हैं? बरसात से सुरक्षा, और तूफान आंधी, तो स्थूल का अनुभव पहले, फिर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है। हर चीज में पहले स्थूल में अनुभव करके देखना है, फिर सूक्ष्म की तरफ जाना है। जरूरी नहीं ऐसी ही छत्र छाया हो। अभी हम जहां कमरे में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, वो भी छत्र छाया ही है। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, तो मैं बाप की छत्र छाया के अंदर हूं। इसको केवल जानना नहीं है, तर्क नहीं करना है। केवल बुद्धि से पॉइंट्स केवल काफी निकल सकती है, पर पॉइंट्स निकाल लेंगे, पॉइंट्स को नोट करेंगे, पॉइंट्स की फाइल बन जाएगी एक, उसको सब जगह फॉरवर्ड भी कर देंगे, पर उसका अनुभव तो कुछ भी नहीं किया। अनुभव सुबह से लेकर रात तक अलग अलग चीजों में इस छत्र छाया का अनुभव करना है। तो सारी दिनचर्या शुरुआत हम दिनचर्या से करेंगे, वो भी स्थूल दिनचर्या से, और फिर सूक्ष्म में जाएंगे। तो सबसे पहला है, मैं सो रहा हूं और मेरे ऊपर एक छत्र छाया है, मेरी सुरक्षा, स्थूल सुरक्षा सोते समय। दूसरा, अमृत वेला उठा हूं, योग चालू है और ऊपर से छत्र छाया है। तीसरा, मुरली सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ऊपर से छत्र छाया है। मुरली सुनते हुए, मुरली पढ़ते हुए अनुभव करना है जैसे कोई छत्र मेरे ऊपर है, जैसे किसी छतनार वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूं और वो मेरी सुरक्षा कर रहा है। मैं निरंतर सुरक्षित हूं, व्यायाम कर रहे मैं सुरक्षित हूं, ऊपर छत्र छाया है। मैं भोजन कर रहा हूं और भोजन करते करते क्या अनुभव करेंगे, बीच बीच में ऊपर भी देख लेना, छत्र है या उड़ गया। उस छत्र के नीचे बैठकर मैं भोजन कर रहा हूं, भोजन करना है एक कमल पुष्प के ऊपर बैठकर जिसमें इतनी पवित्रता है, एक एक निवाला, एक एक कोर, एक एक किट्टी उसकी याद में है। उस पवित्र अवस्था में भोजन स्वीकार करेंगे तो वो भोजन शक्ति बन जाएगी, तृप्ति होगी। आज की मुरली में एक रोटी में भी तृप्ति है तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्ति है। चाहे सब मिले तो तृप्ति, नहीं मिले तो ज्यादा ही तृप्ति, कुछ भी ना मिले तो बहुत ज्यादा तृप्ति। हर परिस्थिति में तृप्त, तृप्त, क्योंकि तृप्ति स्वभाव है, उसका भोजन से संबंध नहीं है। मन ही तृप्त हो चुका है तो बाहर की चीजें, स्थूल चीजें थोड़ी हमें तृप्ति देती है, वो तो और भूख को बढ़ाती है। और भूख तो आज तक किसकी कम हुई है? एक है शारीरिक भूख, एक है भावनात्मक भूख, तीसरी है बौद्धिक भूख, चौथी है आध्यात्मिक भूख। चार प्रकार की भूख होती है। एक शरीर की भूख है स्थूल भोजन की और विकारों की, एक है बौद्धिक, और सीखना है और नया ज्ञान प्राप्त करना है, जितने हुनर संसार में है सब सीखना। एक है भावनात्मक भूख, प्रेम की, सब है पर कोई प्रेम नहीं करता। एक है आध्यात्मिक भूख, और ये अनुभव काफी नहीं है, और गहरा और गहरा और गहरा। चारों ही भूख, भूख का शमन हो जाए, शांत हो जाए। तो भोजन करते हुए क्या अनुभव करना है? छत्र छाया के अंदर खा रहा हूं, केवल इस देह को चलाना है बस, बाकी मैं पहले से ही तृप्त हूं। इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अगला दिनचर्या, सेवाएं कर रहे हैं, ऊपर क्या है, छत्र छाया है, ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, ऊपर क्या है, छत्र छाया है, परिस्थितियां आ रही है दिनचर्या में, ऊपर क्या है, छत्र छाया, विघ्न आ रहे हैं, ऊपर क्या है, छत्र छाया, यात्रा यहां से नीचे, नीचे से ऊपर या और कहीं, अलग अलग साधनों में यात्रा कर रहे, शरीर नीचे बैठा है परंतु एक भाव निरंतर है कि ऊपर क्या है, छत्र छाया, मेरे ऊपर छत्र छाया है, मैं साधारण नहीं हूं, एक सूक्ष्म, एक अज्ञात, भरते हुए किसी ने ना देखा पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। पहले भी कभी सुनाया था, मोहम्मद पैगंबर जब रेगिस्तान में तपती धूप में चलते थे तो अनुभव करते थे कि बादल जैसे छत्र है, जहां जहां वो जा रहे हैं बादल ऊपर से जा रहे हैं, उनके ऊपर छाया दे रहे हैं उनको, वो बादल किसी और को शायद नहीं दिखते पर उन्हें दिखते थे। यात्रा करते हुए छत्र छाया, नुमा शाम का योग छत्र छाया, स्नान करते हुए छत्र छाया, जो भी दिनचर्या में छोटे छोटे कार्य है उन सब में अनुभव करेंगे कि मैं कहां हूं, छत्र छाया में हूं। किसी को बताने की बात नहीं है, लिखने की भी बात नहीं है, ना कुछ पॉइंट्स निकालने की बात है, पॉइंट्स बहुत निकाल लिए, ना ही चित्र निकालने की भी बात है, अनुभव करना है। अब लक्ष्य एक ही रखना है बस, ब्राह्मण जीवन में अनुभूति। बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया, बहुत लिखा, क्लासेस सुनी सुनाई, कितना टाइप किया, कितनी फाइल्स बनाई, कितनी सबको भेजी, कितने रिकॉर्डिंग की, क्या कुछ किया, पर कुछ तो मिसिंग है, और वो जो मिसिंग है, वो जो रहा हुआ है, बचा हुआ है, वो है अनुभव। भक्ति में, ज्ञान में आने से पहले हमारे पास क्या था, कुछ नहीं था, बहुत कम चीजें थी, अभी ज्ञान का जितना विस्तार है वो कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वहां अनुभव होते थे। किसी मंदिर में चले गए, बैठ गए और अशरीरीपन और प्रभु प्रेम के आंसू आ जाते थे, अभी घंटों बाबा के कमरे में बैठते हैं परंतु आंसू विलुप्त हो गए हैं, ज्ञान के विस्तार में सूखापन आ गया है, क्योंकि फोकस चेंज हो गया। कोई भी नई बातें मिली तुरंत लिखो, तुरंत नोट करो, तुरंत ऐसे करो, नोट करो अच्छी बात है, परंतु नीचे नोट करते करते यहां नोट करना भूल ना जाए, कितनी डायरियां भरी होगी ब्राह्मणों की, कितनी मुरलियों की डायरी होगी हर एक के घर में जितने ब्राह्मण हैं। अनुभव, और अनुभव शाम को अनुभव करता हूं नहीं, अभी अभी यहां जो क्लास में बैठे हैं यहीं बैठे बैठे अनुभव करना है, सुनाने वाला जो सुना रहा है ठीक है, पर मेरा अपना अनुभव चल रहा है, ऊपर छत्र छाया है मेरे, तो सभी अलर्ट बैठेंगे फिर से, ट्रिपल लॉक, जो नीचे बैठ सकते सब नीचे बैठ जाए, ऊपर कोई नहीं बैठेगा चेयर में। शरीर के अस्तित्व की अनुभूति, देह जो स्थूल है उसको अनुभव करना है, इसलिए नहीं कि इसमें राग हो, इसलिए नहीं कि इसमें आसक्ति हो, परंतु इसे जानने के लिए, अनित्य का अनुभव, अनित्य से पार होने के लिए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म आत्मा, अनुभव, कहाँ हूं मैं आत्मा, किस स्थान पर हूं, शरीर से मेरा कैसा संबंध है, क्या तादात्म्य है, क्यों इतनी गहरी आ सकती है। आंखों के सामने अपनी दिनचर्या को लाएंगे, अमृत वेले उठाओ, एक सूक्ष्म छत्र छाया मेरे ऊपर, एक दैवी छत्र जो सदा ही मेरी सुरक्षा में तत्पर, अमृत वेले बैठा हूं ऊपर छत्र, व्यायाम का समय छत्र, मुरली का समय छत्र, भोजन का समय, उस स्थान को देखना है जहां रोज भोजन करते, यात्रा का समय छत्र, अलग अलग साधनों में यात्रा कर रहा पर निरंतर कोई मेरी रक्षा कर रहा है, एक अज्ञात हाथ मेरे सिर के ऊपर है, किसी ने निरंतर वरदानी हस्त सिर पर रखा है, व्यस्त दिनचर्या, भिन्न भिन्न आत्माएं, परिस्थितियां, परंतु फिर भी मैं सुरक्षित, मेरे ऊपर छत्र छाया है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मेरा जिम्मेदार वो है, मेरा रक्षक वो है, नुमा शाम का समय छत्र छाया, रात्रि का समय छत्र छाया, डायरी लिखने का समय छत्र छाया, एकांत का समय छत्र छाया, मौन में हूं, स्थूल एकांत में हूं छत्र छाया, ज्ञान के गहन चिंतन में हूं ऊपर एक छत्र छाया, सुबह से रात तक आज मुझे ये अनुभव करना है कि रूहानी माशुक मुझ रूहानी आशिक के साथ है, गार्डन में साथ है, बीच में साथ है, महफिल में साथ है, उसका हाथ और साथ है, उसके याद में लीन मगन। रात को सोते समय भी उसकी छत्र छाया के अंदर। केवल वाणी विलास नहीं, केवल लेखन विलास नहीं, गहन अनुभूति। दिन की शुरुआत के पहले ही अपनी दिनचर्या को देख लेना, क्या होने वाला है आज पता नहीं, कौन से विघ्न क्या आने वाले हैं कुछ पता नहीं, परंतु एक चीज का पता है, चाहे कुछ भी हुआ आज दिन भर, भगवान साथी है। उसकी याद की छत्र छाया में मैं हूं। ओम शांति। जब तक अनुभव मेरा नहीं, तब तक कुछ भी उन्नति नहीं। अध्यात्म बाकी विद्याओं जैसा नहीं है, स्थूल जैसा नहीं है। किसी और का हाथ जला, उसको अनुभव हुआ, पर मुझे नहीं, दूसरों को अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अध्यात्म में किसी और को अशरीरीपन का अनुभव हुआ तो मुझे होगा, किसी और का अनुभव सुना मुझे होगा, जरूरी नहीं है। हर एक को अपनी मेहनत खुद करनी है, हर एक को अपना चिंतन खुद करना है, हर एक को अपना मौन खुद ढूंढना है, हर एक को अपना एकांत खुद ढूंढना है। कहां एकांत मिले, हर एक को अपना समय खुद ढूंढना है। और उस गुफा में बैठकर फिर चिंतन करना है, चाहे मुरली चिंतन हो, जैसे आज की मुरली, मुरली पढ़ा, मुरली सुनी, क्लास सुनी मुरली के ऊपर, क्लास कराई, पर शायद अनुभव अभी भी नहीं हुआ है। अनुभव तो आज का सम्मान है। मैं बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाली आत्मा हूं, सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। याद ही छत्र छाया है, जो छत्र छाया के अंदर रहते हैं सेफ रहते हैं, आंधी तूफान उनका कुछ नहीं कर सकती। बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है, धोखा, माया, भूलना। 63 जन्म भूलते रहे, अब भी भूलोगे? संगम युग है, याद करने का युग, फिर कैसे भूल सकते हो? भूलने से ही तो दुख हुआ, शोक वाटिका, और कल सुना था, चिर जाओगे। दो पैर में पाव रखोगे तो, दो नाव में पाव रखोगे तो क्या हो जाएगा, चिर जाओगे, ना इधर के ना उधर के। अब ये तो थी स्थूल दिनचर्या में छत्र छाया का अनुभव। उसके बाद कुछ गहरी और सूक्ष्म बातें हैं, जैसे सबसे पहला है परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थिति आएगी, सारे हिसाब यहां चुकते होंगे, मित्र शत्रु बनेंगे, शत्रु मित्र बनेंगे, अपने आप होगा यहां, क्योंकि किसका कौन सा रोल कब इमर्ज हो रहा है हमें पता नहीं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था दो आत्माओं के बीच, अचानक इसके कोई पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज हो गए और इसे स्मृति आ गई कि मेरे ये मेरा कोई नहीं है, मेरा तो लक्ष्य ही कुछ और है। पुराने जन्म की कोई प्रतिज्ञा थी जो अपूर्ण रह गई थी, प्रतिशोध की प्रतिज्ञा थी, और वो प्रतिशोध की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, इस जन्म में कहीं और जन्म हो गया, उन्हीं शत्रुओं के बीच मां बाप बन गए, यहां उसको याद आ गया कि ये सब मेरे शत्रु है, उसका सारा प्यार इनसे खत्म हो गया, अचानक से दुश्मन बन गई आत्मा। किसके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, वो इतने जन्मों के जो संस्कार है वो कौन सा संस्कार कब जाके बाहर आ जाएगा पता नहीं। अब तक निर्विकारी था, अब तक ब्रह्मचारी था, अचानक काम विकार का वार और अचानक पुरानी दुनिया में चली गई आत्मा। हम देखते के देखते रह गए, ये क्या हो गया कैसे। तो यहां बहुत कुछ हो रहा है, उत्पात और लय संस्कारों का। इसलिए इन परिस्थितियों में हमें क्या करना है, अचल रहना है। एक तो अपनी हिम्मत से, अपनी शक्ति से, और दूसरा परमात्मा शक्ति, दो शक्तियां जुड़ जाए। तो हर परिस्थिति में, परिस्थिति क्या आएगी आज पता नहीं है, पर जो भी आएगी कैसी भी आएगी एक चीज तो पता है, कौन सी है, छत्र छाया, उसकी याद छत्र छाया। अगर उसकी याद में रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, उसने खुद कहा है। इतने सारे भक्तों के अनुभव है द्वापर से, कितने भक्तों के अनुभव, एक एक भगत का जीवन देखो तो उसमें क्या है, अनुभव ही अनुभव है। ब्राह्मणों के भी इस जीवन के कितने अनुभव है कि बाबा ने मदद कर दी। तो एक तो परिस्थिति में, दूसरा प्राकृतिक आपदा है। कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जाए पता है, अचानक भूकंप, अचानक बहुत ज्यादा ठंडी, प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी हो सकता है। इसमें समय नाजुक है, समय बिगड़ने वाला है, हालतें बिगड़ने वाली है। तीसरा ये प्राकृतिक आपदा है, तीसरा प्रकृति, प्रकृति से भी अपनी रक्षा हो। प्रकृति में मौसम, मौसम बदलेगा, ठंडी गर्मी बारिश, ये तीनों में ही पुरुषार्थ कम ना हो, पुरुषार्थ कम ना हो। तो इसमें एक तो है बारिश, वो आसान है, छाता ले लिया, रेनकोट पहन लिया, या घर से बाहर ही ना निकलो। परंतु जो मधुबन में है उनको निकलना है, क्योंकि बाबा के कमरे में योग करना, मधुबन में आना, अपने आप को हम समझाते बारिश हो रही है कमरे में ही करेंगे, नहीं, जो नियम है उसको तोड़ने नहीं है, जो मर्यादाएं बना दी है उसको किसी भी हालत में फॉलो करना है, चाहे बारिश हो कुछ भी हो। फिर दूसरा धूप, धूप से बचना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है। तीसरा ठंडी, ठंडी का क्या करे, ठंडी का क्या करे, आइसमैन, आइसमैन पता है ना, विम हॉफ, जिसने पढ़ा नहीं है विम हॉफ के बारे में वो पढ़ ले। एक व्यक्ति है विम हॉफ जो ट्रेनिंग देता है पूरी, और वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसने, विम हॉफ। तीन चीजें बताता है वो ठंडी से बचने की, पहला ब्रीदिंग, ब्रीदिंग टेक्निक्स। हिमालयों की गुफाओं में लोग रहते हैं तपस्वी, उनको ठंडी वंडी कुछ नहीं लगती है, क्योंकि कुछ तकनीक है उनके पास श्वास की, जिससे अपने शरीर में गर्मी पैदा कर देते हैं, बाहर की ठंडी का कोई प्रभाव नहीं। दूसरी मेथड है कोल्ड थेरेपी। तीसरी मेथड है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन अर्थात इसको ट्रिपल थेरेपी कहा जाता है, डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ संकल्प। कोल्ड थेरेपी में बहुत सारी चीजें आती है, दो तीन चीजें हम इसकी देखेंगे आज, ताकि ये जो ठंडी ज्यादा लगती है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। सबसे पहले कम हो जाएगी, हो जाएगी, इसलिए नहीं कि, और उससे फायदे बहुत हो जाएंगे, क्योंकि अंदर शक्ति जागृत हो जाएगी, एक अद्भुत सी शक्ति, और प्रकृति से हमारा जो संबंध है तादात्म्य बढ़ जाएगा। कोल्ड थेरेपी में सबसे पहले मन को यह समझाओ कि ठंडी है ही नहीं, यह सबसे पहला काम, कुछ भी है ही नहीं, यह मन का खेल है, यह मन का खेल है, कुछ भी नहीं है, पहला काम। दूसरा टेम्परेचर देखते रहना, क्योंकि हम जितना टेम्परेचर है उससे क्या सोचते हैं, बहुत ज्यादा है, आज तो जीरो होगा, है 13, और पहनो और पहनो और पहनो और पहनो, अरे क्या पहनो, सब अंदर डाल दो, ये जैकेट वो जैकेट, ये स्वेटर वो स्वेटर, सब अंदर डाल के रख दो, ये इनर वो इनर, खेल इधर है। तीसरा स्कॉटिश शावर, जेम्स बॉन्ड शावर, जो उसके पहले भी सुनाया था, अल्टरनेट बाथ, गरम से चालू करो, फिर ठंडा, फिर गरम, फिर गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा, और एंडिंग हमेशा कब से, कहां से करनी है, ठंडे से। स्नान करके निकलो तो हमेशा ठंडा लास्ट हो, पूरी ठंडी बकेट डाल दो ऊपर या तो शावर, तो जब बाहर निकलेंगे इतनी ठंडी नहीं लगेगी। और जो गर्म ही रहते, विदेश में एक जगह है, उस जगह का हम नाम भूल गए, वहां पे इतनी एक प्रिजन बनाया है, सारे कैदियों को उस प्रिजन में रखा जाता है, बहुत बड़ा टापू है एक, बहुत बड़ा, उसका नाम हम भूल रहे हैं, बहुत फेमस है अमेरिका में कहीं, तो वहां पे सारे कैदियों को, इतनी ठंड है वहां पर, इतनी ठंड है और पूरा बर्फ का पानी है, और ये जो कैदी है इन सबको गर्म गर्म पानी दिया जाता है नहाने के लिए, और कोई सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि ये लोग निकल ही नहीं पाते, गर्म पानी की आदत पड़ गई है, तो जब निकलेंगे तो पानी से तो मर जाए, इतना ठंडा पानी है बाहर, हिम्मत ही नहीं होती किसी की, कैसे निकलेंगे, भाग सकते हैं पर कोई नहीं भागता, क्योंकि आदत किसकी पड़ गई है, गर्म की, वो एडिक्शन है, उससे इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है कोल्ड। एथलीट्स जो होते हैं उनको कोल्ड आइस वाटर बात करते हैं, अभी अभी वो टब में बैठते हैं गर्म पानी और फिर घुमा देते हैं पूरा कॉक, सीधा कोल्ड माइनस में चला जाता है और शॉक लगता है, शॉक ऐसे होता है, ये हार्ट रेट बढ़ जाता है एकदम, बढ़ना चाहिए, शॉक लगना चाहिए, करंट लगना चाहिए, एकदम ठंडा डाल देगी, परंतु थोड़े देर के बाद में अमृत सी अनुभूति होती है, कुछ नहीं होता है, अमृत सी अनुभूति होती है, धीरे 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 करना है, अपने आप को आदत डालनी है, धीरे स्लोली 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 स्लोली, शुरुआत करना गर्म से, फिर ठंडे में आना, फिर गर्म, फिर ठंडा, एंडिंग ठंडे से, यह है स्कॉटिश बात। उसके बाद में जितना हो सके कोल्ड में घूमने का भी अनुभव हो, धीरे 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 धीरे, जितना हो सके धीरे धीरे धीरे, मन को समझाते रहना है, कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि इस जिसने इसको जीत लिया वो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जीतते जाता है, इसका संबंध केवल कोल्ड से नहीं है, मन से है, मन की शक्ति से है, मन की पावर से है, क्योंकि सारा खेल यहां हो रहा है, सब कुछ यहां हो रहा है, हमने यहां बदल दिया तो बहुत सारी चीजें बदलने लगती है, डिटर्मिनेशन पावर, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कोल्ड एक्सपोजर बढ़ा देना है, खिड़कियां बंद बंद कर करके सोते हैं, खिड़कियां खोल दो देखो क्या होता है, इतना सारा ओढ़ के सोते हैं, पहले हमें आदत थी एक ब्लैंकेट फिर उसके ऊपर वो सब पहन के सोते थे, और अमृत वेला उठने में बहुत मुश्किल, क्यों होता है, क्योंकि अंदर का वातावरण इतना गर्म और बाहर ठंडा, कैसे उठे, अंदर और बाहर का सेम रख दो तो उठना इतना सहज हो जाएगा, अमृत वेला एक पतली सी चादर, बीच बीच में पंखे का भी अनुभव, नहाने के बाद तुरंत फैन ऑन, एकदम ठंड से नहाओ, ठंडे पानी से और फैन फुल स्पीड, देखो क्या होता है, ऐसी ऊर्जा ऐसी शक्ति जनरेट होती है अंदर कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, परंतु ये काम बहुत धीरे 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 करना है, पर हर एक को करना ही है, हमें लगता है ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, नहीं किया, अभी बहुत समय हो गया शुरू कर दिया, इसलिए ये 6 महीना जो है आनंद के है, हम तो वेट कर रहे हैं कब 0 डिग्री हो जाए, कब 0 डिग्री हो जाए या उससे नीचे चला जाए तो मजा आ जाए, पहले डर था, हमेशा डरते थे, ठंडी आ गई ठंडी आ गई, ये निकालो वो निकालो, इस बार सब अंदर डाल के रख दिया, कुछ भी नहीं चाहिए और है ही नहीं ठंडी, अभी इतना 10 साल भ्रम में थे ऐसा लग रहा है, ठंडी की भ्रम, ठंडी का भ्रम, कौन सी ठंडी, कैसी ठंडी, लोग जाके देखो रात में कैसे कैसे जीते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, परिस्थितियां संसार की कैसी है वो देखो, ये एक अलग फायदे है, एक तो संकल्प शक्ति, एक तो शरीर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और दूसरा एनर्जी डेवलप, एनर्जी जनरेट होगी बॉडी में से, पसीना आ जाए, एक्सरसाइज करो, उठे बराबर क्या करना चाहिए, नहीं उठे बराबर एक अभ्यास है, कौन सा बताओ, कौन सा, हरे को करना है, कुमारों को तो बिल्कुल करना ही करना है, दंड बैठक 100 धीरे धीरे 20 से चालू करना, कुछ देर रुकना, फिर 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 फिर कमरे में ही करो, गर्मी ठंडी गर्मी जनरेट होगी और ऊर्जा आएगी और अमृत वेला फिर नींद नहीं आएगी, नहीं तो अमृत वेला लुढ़कते रहते हैं इधर उधर 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 उधर, या तो प्राणायाम करो 5 मिनट उसके बाद में अमृत वेला चालू करो, जिनको भी नींद आती है इसका क्या अर्थ है? बैठे हैं और नींद में, ऐसे अमृत वेले का क्या मतलब है? उठो और सीधा उड़ जाओ। तो ये तो कर ही सकते हैं, और कुमारों को तो करना ही करना है, सभी को करना है। ये जो है ना, ये सब उठा के फेंक दो बाहर, हाथ भी नहीं दिखाई देता है कहां है। यहां पर भी अनुभव करना है कि बाबा मेरी छत्र छाया। कोई ऐसे सेंटर पे चले जाओ, यहां गर्म पानी नहीं है, क्या करोगे? क्या बहन जी से करोगे? अरे करो, कितनी मुश्किल, उनको भी मुश्किल, हमको भी मुश्किल हो। कई ऐसी परिस्थिति है कि भाई नहा लो, ये लो बाथरूम में, बाथरूम में गए, इतना ठंडा, कोई पूछता भी नहीं कि गर्म है नहीं है, क्या चाहिए। हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाएंगी, कुछ चाहिए ही नहीं। हमको याद है, बहुत पहले हम एक सेंटर पर गए थे, तो चार दिन रहना था, तो वहां पे तो एकदम इतना ठंडा पानी था। तो हमने कहा वो हीटर है क्या? तो उन्होंने हमको वो रॉड वाला होता है ना, वो हीटर दिया। अब हीटर तो दे दिया, पर वो तो चालू ही नहीं। तो फिर हम क्या वापस जाके बोले ये चल नहीं रहा है, छोड़ो, तीन दिन ना है। और जाते समय कहा वो जरा रिपेयर कर देना। तो वो कह रहे क्या वो चालू नहीं है? मैं कहा नहीं है। तो क्या किया आपने? क्या किया मतलब? ठंडे पानी से किया जो करना है, खत्म। रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, सीधा बकेट लेके डाल दो, शॉक, करंट लगता है, करंट सारा पूरा जो सुस्ती आ रही थी ना, पूरे सारे सामान जागृत हो जाते हैं कि मैं अचल उड़ल आत्मा हूं, मैं महावीर हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सारा ये जो है ना, ये पोर्स जो होते सारे खुल जाते हैं, सारे पोर्स खुल जाते हैं, शक्ति आ जाती है, जागृत आ जाती है, और जो हार्ट रेट है हमारा वो बढ़ जाता है एकदम, ऐसे होने लगता है। पर उसमें भी अनित्य है। अब वो दूसरा अभ्यास करो साक्षी का, ठंडे पानी में अनित्य है, गर्म पानी वो भी अनित्य है, अभी अभी गर्म तो भी कोई प्रभाव नहीं शरीर पर, चेहरे पर कोई कुछ भी प्रभाव नहीं, पानी डाल दिया उसके बाद भी मुंह बंद, नहीं तो पहले पहले कर सकते परंतु बाद में मुंह भी बंद, कुछ नहीं, फिर ठंडा नहीं लगता। तो आबू में रहने वाले हैं उनको तो ठंडी को तो जीतना कंपलसरी है, बाहर वाले करे ना करे ये उनकी बात है, पर आबू में जो रहते हैं, माउंट में जो रहते हैं, उनका सामने इसको एक पुरुषार्थ बना देना है कि ये जो ठंडी है इसको मुझे किसी भी हालत में पूरा इससे बाहर निकल जाना है, इसका कोई मुझ पर प्रभाव ही नहीं, कुछ भी प्रभाव नहीं, जरा भी प्रभाव ना, तो इतना एक जीत की अनुभूति होगी। तो प्रकृति, उसके बाद में अगला छत्र छाया का अनुभव कहाँ करना है? विघ्न, जीवन में विघ्न आएंगे, विघ्न तीन लोगों से आ सकते हैं, एक हमारे बड़े, हमारे साथी और हमारे जूनियर, तीनों से भी विघ्न आ सकते हैं। इन तीनों परिस्थितियों में बाप मेरी छत्र छाया है। साथियों से विघ्न आएंगे, छोटों से विघ्न आएंगे, बड़ों से भी विघ्न आएंगे, क्योंकि सारे हिसाब यहां पे चुकतु करने हैं, तो विघ्न तो आने ही आने हैं। एक ये, उसके बाद में जॉब में प्रॉब्लम्स, उसमें भी बाप छत्र छाया, बिजनेस में प्रॉब्लम, बाप छत्र छाया उसमें, उसके बाद सेवाओं में प्रॉब्लम, बाप छत्र छाया, उसके बाद में फाइनेंशियल, आर्थिक परिस्थिति। सोचो कि हमको किसी को आज शाम तक 50,000 रुपए देने कहां से लाए? है ही नहीं, उसको देने जरूरी है, हमने लिए थे उससे, कहां से लाए? ना बैंक अकाउंट में कुछ है, ना कोई जॉब है, ना कुछ है, ना कुछ है, कहां से लाए? वो कहता है मेरे पैसे मुझे लौटा दे। क्या किसी के सामने भीख मांगे मुझे पैसे दे? ये एक परिस्थिति में अपने आप को डाल के देखो कि हम यहां नहीं है, भले लौकिक में है, कहीं पर भी है, पर किसी के हमने पैसे लिए थे और उसको आज शाम तक लौटाने हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अपने पिताजी के पास गए, वो कहते मेरे पास नहीं है, जाओ यहां से। हम अपने मित्रों के पास गए, मित्र कहते हैं कि नहीं मेरे पास भी नहीं है, इतने में कहां से लाऊं? बैंक में है थोड़े बहुत पड़े हुए 10,000, बाकी 40,000 कहां से लाए? एकदम से परिस्थिति है ये, क्या करें? आशीष भाई क्या करेंगे? बाबा पैसे दे दे। परिस्थिति है। या फिर घर मालिक आ जाए, कहे घर खाली करो आज तीन दिन में, कहां जाए? सेंटर खाली करो तीन दिन में, कहां जाए? ये परिस्थिति में अपने आप को डाल के देखना है क्या होता है, कैसी चेतना, कैसे संकल्प हम सबसे पहले बाबा को याद करते हैं या देहधारी को? किसके पास जाऊं? कोई पॉलिटिशियन, कोई साहूकार, कोई बड़ा सा व्यक्ति जिसको राखी बांधी थी उसके पास भागो, वो कुछ दे दे, ये कुछ दे दे, वो कुछ दे दे, ये कुछ दे दे, कोई कुछ नहीं दे रहा है। अब देखो किसकी याद आती है। एक वो, उसके बाद में बताया था बीमारी, डॉक्टर के पास गए, रूटीन चेकअप कराया, डॉक्टर कहता है तुम्हारे जांच से पता चला है कैंसर है। क्या कैंसर? मुझे तो कुछ भी नहीं है, इसमें दिख रहा है, और अभी टेस्ट चालू हो गए, अगले एक महीना सारे ढेर सारी टेस्ट हुई, ये स्कैन वो स्कैन, इधर जाओ। मन की अवस्था कैसी है बीमारी में? अचानक से बीमारी, ऐसी बीमारी कि जिसकी वजह से डर है, थोड़ा जाने का खतरा है। वहां पता चलता है क्या पुरुषार्थ था, कितनी अशरीरी अवस्था थी, मृत्यु का कैसा भय था। अचानक से मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं चली जाऊंगी तो डिपार्टमेंट का क्या होगा, मैं अगर चला गया तो एकदम सारे विचार आ जाएंगे। बीमारियों के समय बुढ़ापा, बुढ़ापा चल नहीं पाते घुटनों में, हाय रे गई, हाय राम, बाप की छत्र छाया का अनुभव होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस, बिजनेस क्राइसिस, बॉडीली क्राइसिस, उसके बाद में ब्लैक मैजिक, डर है इसने कुछ कर दिया है मुझ पर, कमरा खोला देखा नींबू और उसमें मिर्ची क्या करेंगे ऐसा दृश्य मिला तो उसको धो के अच्छे से शरबत बना के पी लो। शिव मंत्र के आगे और कोई मंत्र तंत्र चल नहीं सकता, अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, इन्वर्टेड कॉमा, शिव मंत्र के आगे और कोई मंत्र तंत्र नहीं, इसको जो करना है करे, ऊपरी हवा, इधर की हवा, उधर की हवा, ये आत्मा वो आत्मा, प्रेतात्मा भूतात्मा, कोई कुछ नहीं कर सकता मास्टर सर्वशक्तिवान। ये सारा जिसने स्वीकार कर लिया ये लोग मुझे कुछ कर रहे उसको होगा, जिसने रिजेक्ट कर दिया उसको कुछ नहीं होगा, सारा मन का खेल है। बाप छत्र छाया है, कौन क्या कर सकता है। तो ये भी एक अभ्यास है। तो ये बहुत सारी ऐसी क्या है और भी परिस्थितियां आप बताएंगे, बहुत सारी परिस्थितियां और जहां पर अनुभव करना है, और अनुभव जैसे कहा ना उस परिस्थिति को क्रिएट करो और देखो, 15 मिनट क्रिएट करो, कुछ भी पैसे नहीं है, शाम तक पैसे देने क्या करूं, यज्ञ में कितनी बार ऐसा हुआ है ही नहीं कुछ खाने को, अचानक मदद आ गई, वो तो दूसरी बात है अचानक आ गई, पर हमारे साथ ऐसा हुआ है क्या किया जाए, अभी कहा जाए घर जाओ, अचानक पेपर, क्यों, क्यों का कोई उत्तर नहीं है, कंप्लेंट आई है तुम्हारी वो मत पूछो क्यों, जो कहा है वो करो बस खत्म, अचानक परिस्थिति, अरे 5 साल से यहां है कहां जाए, वो तो सब कुछ छोड़ चुके हैं, वो तो लेंगे भी नहीं, वो नहीं पता हमको। तो हम कहां जाते हैं, सबसे पहले परिस्थिति आने पर किसका ख्याल आता है, मनुष्य या भगवान? सब कुछ छोड़ के हम बाबा के कमरे में बैठ के योग करने बैठते हैं कि फोन, इसको फोन, उसको फोन, इसको फोन, इसको फोन, इसकी मदद, उसकी मदद। मैं छत्र छाया के अंदर हूं, जब कोई परिस्थिति नहीं है तभी सारी परिस्थितियां सोच के रखो कि ये सब होगा, ये सब होगा, लीगल, लीगल मैटर्स, परिस्थिति है, कोर्ट केसेस, काम ना धाम, ऐसे ही जाना पड़ रहा है फालतू में फंस गए कोई लेन ना देन, जाओ हाजिरी लगा के हो कोर्ट में, हम चाहते ही नहीं है फिर भी, पुलिस उसमें अननेसेसरी इन्वॉल्व हो गए, ये हम चाहते ही नहीं है फिर भी, छत्र छाया का अनुभव, गलत आरोप, इल्जाम, तुमने ये किया है चोरी, अरे हम सारी दुनिया छोड़कर यहां आए, हम चोरी करेंगे, यहां की गई तुमने, अब क्या करोगे, ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, सब होगा, ये सब होना ही है, खेल है ना, अच्छा सा। तो ये सब होगा, तुम मेरी राखो लाज हरी। भगत कहता है प्रभु मेरे से नहीं होता है, मेरी लाज तुम रखो। और जो भी इस मार्ग पर निकलेगा, धर्म के मार्ग पर निकलेगा, अध्यात्म के मार्ग पर निकलेगा, दुश्मनों की कमी नहीं है इस मार्ग पर, ढेर सारे दुश्मन तो खड़े हैं। महात्मा बुद्ध जब हुए, लोगों ने तभी अवतार समझ लिया, लोगों ने इतने उनके लाखों शिष्य हो गए, पर कुछ कुछ दुश्मन भी थे। जरूरी है कि सारे उनको फॉलो करने वाले थे, दुश्मन भी ऐसे थे कि बहुत सारे दुश्मन थे, उनको मारने की कोशिश की, सब कुछ किया, दुश्मनों का नए नए दुश्मन रोज आते थे। सबसे पहले सोचा इसको गिराना तो है, अब क्या किया जाए। सबसे पहला तो ये कि ये जो कर रहा है ना, ये गलत है, ये इस तरह का सन्यासी का वेश नहीं होता है, उसकी जटाएं होती है, इसके कुछ नहीं है, चलो इसको विरोध करते। पर दूसरों ने कहा अरे ये विरोध करने तो उसको आके चले गए लोग, ये पॉइंट कुछ काम का नहीं है तुम्हारे, वो जो नहीं करता है ना उससे विरोध से कोई फायदा नहीं। अच्छा तो वो क्या कहता है उसका विरोध करते हैं फिर, अब वो जो कहता है प्रवचन में उसका विरोध करते। तो वो क्या क्या कहता है, वो कहता है अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार करो, अब इसका क्या विरोध करे। अब ये भी पॉइंट गया, पहला तो गया कि वो जो नहीं करता उसका विरोध करो, क्योंकि उसके पास जाते हो उसको कहते, तो वो कहते मैं नहीं करता तुम करो, मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं जटाएं नहीं रखता तुम रखो, मेरा कोई विरोध नहीं है। तो इसमें कैसे उसको गिराया, अब तो जो नहीं करता उसका तो विरोध नहीं कर सकते, अब जो करता है उसमें कोई खोट नहीं निकाल सकते। अब बचा क्या, दो ही चीजें बची, कामिनी कांचन, दो ही चीजें बची, कामिनी और कांचन। कांचन तो ये राज छोड़ के आ गया है, अब इसका क्या विरोध करे। हाँ एक चीज है जिसमें इसको गिराया जा सकता है, वो है स्त्री। तो उन सब ने एक स्त्री को तैयार किया, और वो स्त्री उनके विहार में जाती थी और सुबह सुबह निकलती थी वहां से और कहती थी कि आज तो मैं बुद्ध के विहार में थी रात भर। लोगों को आश्चर्य होता था, भिक्षुओं को, पर कोई कहता नहीं था कुछ, वो चुपचाप चली जाती थी। और एकदम फिर 8-9 महीने के बाद आई, उसका पेट बड़ा, ज्ञानियों की सभा है, और वो कहती है कि ये भिक्षु बुद्ध को कहती है, ये तुम्हारे बच्चे के बारे में तुमको कोई चिंता है कि नहीं, ये तुम्हारे जो इतने साहूकार लोग बैठे उनको बोलो इसका ध्यान रखे। बुद्ध अपनी स्थित प्रज्ञ अवस्था में बैठे और कहानी है कि कोई चूहा उसके कपड़ों में घुस गया और वो जो लकड़ी उसने बांध रखी थी वो खुल गई और वो गिर गई। तो ज्ञानियों को लोग छोड़ते नहीं है, विरोध तो होगा, किसी को भी नहीं छोड़ा। अक्का महादेवी थी साउथ में, अक्का महादेवी जब 7 साल की थी तभी उसको ज्ञान, वो दीक्षित हुई। 16 साल तक तो वो पूर्ण जैसे शिव चन्न मल्लिकार्जुन, उसको ही अपना, शिव को ही अपना पति मान लिया उसने। और जो राजा था वहां का कौशल देश का, उसकी नजर उसकी पड़ी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसने कहा मुझे शादी करनी है, कुछ का कहना है शादी हुई, किसका कहना है शादी नहीं हुई, किसका कहना है उसने 3 शर्तें रखी, या कुछ का कहना है उसने पहले शर्तें रखी, और फिर बहुत सारी हाना हाना की बातें हैं। परंतु जब उसके पति ने उसको एक बार कहा कि तुम मेरे इस पर पलती हो, उसने कहा मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, और कपड़े विपड़े सब निकाल के चली गई और पूरा जीवन भर नग्न अवस्था में रही, उसके जो बाल है बस वही उसके वस्त्र थे, केवल वही सहारा है और कुछ भी नहीं चाहिए। उस शताब्दी में एक स्त्री इस तरह से घूमे, कितनी बड़ी बात है। पर उसका समर्पण, कितने बहुत सारी कहानियां हैं उसकी, अक्का महादेवी की, कैसे एक आत्मा ने शिव को ही अपना सब कुछ मान लिया। और धीरे धीरे फिर उसने निराकार की साधना चालू की, एक गुफा में रही, कोई नहीं चाहिए। आखिर उसका पति जिसने उसका विरोध किया था वो उसकी शरण में आता है लास्ट में। तो ये सब क्या है, ये शक्ति है इन आत्माओं की, कि उसके अतिरिक्त हमको कोई भी नहीं चाहिए, एक भगवान के अलावा और कोई नहीं। विवेकानंद ने कहा है मुझे ऐसे लोग चाहिए जो खड़े रहकर कहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, गॉड अलोन इज अवर एवरीथिंग, एक परमात्मा ही हमारा सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए संसार का, कुछ भी नहीं, ऐसे लोग मुझे चाहिए, ऐसे तपस्वी। ये संसार क्या है, इसमें तो दर्द ही दर्द है। I hate this world, this dream, this nightmare, with its churches and chicanery, with its blackguardism, with its righteousness on the surface and utter hollowness within, with its sanctified shopkeeping. I hate this world. विवेकानंद ने कहा है कि मुझे घृणा है संसार से, ऐसे संसार से, विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, चेहरे बहुत सुंदर है पर अंदर खोट है, ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए. आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, ये दुस्वप्न है, स्वप्न है ये जो कुछ हो रहा है, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, आई हेट दिस वर्ल्ड विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग. यहां दुकानदारी चालू है, सब बेच रहे हैं लोग, अंदर कुछ बाहर कुछ, झूठ है. Vanity of vanity, all is vanity. ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए. With its utter righteousness on the surface, जो righteousness है केवल ऊपर ऊपर दिखावा है, utter hollowness within, अंदर खोखलापन है, ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए. With its blackguardism, with its churches and chicanery, ये जो ढोंग रच के रखा है ये सब मुझे नहीं चाहिए. I hate this world. ऐसा अंदर से वैराग हो, कुछ भी नहीं चाहिए, एक प्रभु के सिवा, एक उसकी याद के सिवा हमारा कोई सहारा ही नहीं है. यहां रहने का सहारा क्या है मधुबन में? कोई व्यक्ति, इसने कहा था, इसने सिफारिश कर दी थी, उसने सिफारिश कर दी थी, इसलिए आए थे. सिफारिश भी एक गुनाह है. रिकमेंडेशन से आए हैं तो रिकमेंडेशन से निकल भी जाओगे एक दिन. हमारे आने का आधार एक ही बाप था बस, और कुछ भी नहीं. कवि लिखता है, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर हमी, तुम जानत सब अंतर हमी, करनी कछु ना करी, तुम मेरी राखो लाज हरी. जैसे द्रौपदी की अवस्था है, सबसे अंत में उसको कृष्ण का ख्याल आया कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, बस तुम ही एक हो और कोई नहीं. अवगुण मोह से बिसरत नाही, अवगुण इतने हैं कि निकलते नहीं, मैं क्या करूं. ऐसा समर्पण चाहिए यहां पर. पल छिना घरी घरी, पल बीतता जा रहा है, तुम मेरी राखो लाज हरी, दारा सुत धन मोह लिए. इन तीन चीजों ने मोह आए, किसने? पत्नी ने, दारा सुत बेटे ने, और धन ने, मोह लिए है. सुध बुध सब बिसरी, बिसर गया हूं मैं, मुझे याद ही नहीं मैं क्या हूं क्या हूं. ब्रह्मा कुमार किस लिए बने थे, ब्रह्मा कुमारी किस लिए बने थे, वो सब भूल गया है. और कहां फंस गए? कारोबार में. सूरपतित को बेगी उतारो, सूरपतित को बेगी उतारो, अब मेरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज भरी. तो मन से ऐसी पुकार निकले कि कोई भी सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, बस तुम ही एक हो, तेरे अतिरिक्त ना कोई था, ना है, ना रहेगा, बस तुम ही सब कुछ हो. तू चाहता है मैं यहां रहूं तो यहां हूं, तुम चाहते हो मैं यहां रहूं नहीं कहीं और जाऊं तो वहां, तुम चाहते हो मैं यही खाऊं तो राजी तेरी रजा में. जैसा तू रखे, जैसा तू चलाए, ऐसा संपूर्ण समर्पण. तो फिर से बैठेंगे अडोल समर्पण भाव से, कि उसको जहां रखना है वो रखे, उसको जो खिलाना है खिलाए, सब कुछ उसका. ओम शांति.
तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज भरी,
तुम मेरी राखो लाज भरी,
तुम मेरी राखो लाज भरी, तुम मेरी राखो लाज भरी. तुम जानत सब अंतर जामी,
तुम जानत सब अंतर जामी,
करनी कर... कछु ना करी तुम मेरी राखो लाज हरी तुम मेरी राखो लाज हरी Thank you.